सोचिए, अगर कोई ये कहे कि एक इंसान जो 47 दिन तक समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से बेड़े पर भूखा प्यासा भटकता रहा हो,
और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना?
हाँ बिल्कुल, और उसके बाद सालों तक एक युद्धबंदी शिविर में अमानवीय यातनाएं सहता रहा हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसे अपनी जिंदगी की असली शांति किसी सुरक्षित कमरे में नहीं मिली।
तो कहाँ मिली?
अपनी उन सबसे भयानक यादों के ठीक बीच में। मतलब ये सुनने में बहुत ही विरोधाभासी और अजीब लगता है ना?
बिल्कुल, मतलब ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है।
आज हम स्रोतों के जिस गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं, वहां हम ऐसे ही कुछ अजीब विरोधाभासों और उनके पीछे के गहरे अर्थों पर बात करेंगे।
हाँ, और ये चर्चा मुख्य रूप से डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड के एक व्याख्यान पर आधारित है, जहाँ वे प्राचीन हिब्रू ग्रंथ, विशेष रूप से यशाया, जिसे आयजाया भी कहा जाता है, उसके अध्याय 26 और 27 का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं।
तो हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि हजारों साल पहले लिखे गए ये शब्द आज की हमारी उलझनों को कैसे सुलझाते हैं।
सही कहा। हम ये भी देखेंगे कि सच्ची शांति, जिसे हम हिब्रू में शालोम कहते हैं, उसका असल मतलब क्या है, और कोई भी भयंकर अराजकता एक सुंदर व्यवस्था में कैसे बदल सकती है।
लेकिन देखिए, इस गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही बुनियादी समस्या है। मतलब जब भी हम किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो आज की मॉडर्न सोच है वो आड़े आ जाती है।
बिल्कुल।
हम हर चीज को, हम उसे गणित के फॉर्मूले की तरह देखते हैं। कि भाई, एक शब्द का मतलब हमेशा वही एक चीज होनी चाहिए। स्रोतों में अनुवाद को लेकर एक बहुत ही मजेदार चर्चा है कि प्राचीन शब्दों को समझना इतना सीधा नहीं है।
एकदम सही। अनुवाद की ये समस्या बहुत ही, मतलब बहुत वास्तविक है। जब हम किसी पुरानी भाषा को आज की भाषा में अनुवाद करते हैं, तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक है शाब्दिक अनुवाद, जिसे लोग अक्सर सबसे सटीक मान लेते हैं,
क्योंकि उसमें मूल शब्दों को ज्यों का त्यों रखा जाता है,
है ना?
हाँ बिल्कुल।
और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो भाषा के तकनीकी बारीकियों का अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप सिर्फ शब्दों पर अटके रहते हैं, तो जो वाक्य का प्रवाह है, जो असली भावना है, वो खो जाती है।
मतलब विचार ही गायब हो जाता है।
वही तो। इसीलिए दूसरे प्रकार का अनुवाद भी बहुत जरूरी होता है, जहां अनुवादक शब्द दर शब्द जाने के बजाय पूरे विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे हम विचार दर विचार अनुवाद कह सकते हैं।
तो अगर हम सिर्फ शाब्दिक अनुवाद के भरोसे बैठे, तो हम तो पूरी तरह भटक जाएंगे। स्रोतों में निर्गमन या एक्सोडस का एक उदाहरण है जो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
अरे हाँ, वो नाक वाला उदाहरण।
हाँ, अगर कोई हिब्रू से शाब्दिक अनुवाद करे, तो वहां ईश्वर के बारे में लिखा है कि ईश्वर की नाक बहुत लंबी है, और वो भी मतलब करीब 6 फीट लंबी। अब आप ही बताइए, कोई भी आधुनिक इंसान इसे पढ़ेगा तो वो तो हंस हंसकर लोटपोट हो जाएगा।
बिल्कुल, या फिर पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा। और यहीं पर उस समय की संस्कृति को समझना जरूरी हो जाता है। प्राचीन हिब्रू संस्कृति में मानवीय भावनाओं को शरीर के अंगों से जोड़कर बताया जाता था,
जैसे गुस्से को गर्मी से जोड़ना।
हाँ एकदम। उन्होंने देखा कि जब किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो चेहरा लाल हो जाता है, नाक गर्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर किसी की नाक सच में बहुत लंबी हो,
तो उस गर्मी को चेहरे से नाक के सिरे तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा।
बिल्कुल। तो लंबी नाक होना वास्तव में ये बताने का एक रूपक था कि ईश्वर बहुत धैर्यवान है, या उसे क्रोध आने में बहुत समय लगता है।
अरे वाह, मतलब ये भाषा की कितनी सुंदर तस्वीर है। अगर मैं इसे हमारी हिंदी भाषा से जोड़कर देखूं, जैसे हम कहते हैं 9-2-11 होना।
हाँ हाँ, भाग जाना।
सही। अब अगर मैं किसी विदेशी को इसका शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद कर दूं 9-11, तो वो तो जीवन भर अपना सिर खुजाता रहेगा।
उसे कभी समझ नहीं आएगा कि कोई भाग गया है।
वही बात है, प्राचीन ग्रंथों के साथ भी हमें यही सावधानी बरतनी है। शब्दों की ऊपरी परत को हटाकर उनके पीछे छिपे उस सांस्कृतिक विचार को पकड़ना है।
और इसी वजह से हम यशाया के अध्याय 26 की तरफ बढ़ते हैं। इन गहरे विचारों को समझे बिना हम वहां दिए गए संदेश को नहीं पकड़ सकते। यहां मुख्य रूप से दो अलग अलग शहरों के बीच का अंतर दिखाया गया है।
ये राजा आहाज के समय की बात है ना?
हाँ, ये वो समय था जब राजा आहाज एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसने विश्वास पर टिके रहने के बजाय अश्शूर के साम्राज्य पर भरोसा करने ज्यादा सुरक्षित समझा,
जो कि उस समय का सबसे क्रूर साम्राज्य था।
तो इस पृष्ठभूमि में एक तरफ वो शहर है जो बहुत ऊंचा है, अभिमानी है, मतलब अपनी ताकत पर बहुत इतराता है, लेकिन उसकी नियति यह है कि उसे नष्ट होना है।
और उसके ठीक विपरीत एक दूसरा शहर है, ईश्वर का शहर। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, और मजे की बात यह है कि इसकी सुरक्षा पत्थर की दीवारों से नहीं बल्कि उद्धार से बनी है। लेकिन इस शहर में हर कोई तो प्रवेश नहीं कर सकता, है ना?
बिल्कुल नहीं। स्रोतों में उन लोगों की चार बहुत स्पष्ट विशेषताएं बताई गई हैं जो इस शहर में जा सकते हैं। पहली, वे धर्मी हैं, मतलब सही काम करने वाले। दूसरी, वे वफादार और भरोसेमंद है। तीसरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका लक्ष्य पूरी तरह से दृढ़ है। और चौथी बात, वे विश्वास करने वाले हैं।
वो जो तीसरी विशेषता आपने बताई ना, दृढ़ लक्ष्य या फोकस, वो आज के समय में मुझे सबसे बड़ी चुनौती लगती है।
हाँ, भटकाव बहुत है।
स्रोतों में इस बात को समझाने के लिए धावक जिम रायन की एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है। जिम एक विश्व स्तरीय एथलीट थे। एक बहुत ही बड़ी दौड़ में वे बाकी सभी धावकों से इतना आगे निकल गए थे कि मतलब जीत एकदम पक्की थी।
लेकिन दौड़ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जिम के दिमाग में एक विचार आ गया। उन्होंने अपना ध्यान फिनिश लाइन से हटा लिया और पीछे मुड़कर देखने लगे कि बाकी धावक कहाँ है।
और ये कितनी मानवीय प्रवृत्ति है, मतलब हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करना चाहते हैं। लेकिन उस एक पल की चूक का नतीजा क्या हुआ?
नतीजा बहुत बुरा था। जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया, शरीर का संतुलन बिगड़ गया, उनका पैर ट्रैक के किनारे से टकराया और अब वो बुरी तरह गिर पड़े। जो रेस वो जीतने वाले थे उसमें वो तीसरे स्थान पर आए।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ध्यान लक्ष्य से हट गया था?
बिल्कुल, उनका ध्यान इस बात पर चला गया कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और इसी भटकाव ने उन्हें हरा दिया।
ये तो सिर्फ खेल की बात नहीं है, हम अपनी पूरी जिंदगी में यही करते हैं। हम एक साथ हजार दिशाओं में भागते हैं और तुलना करते हैं और भटक जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड कहते हैं कि जब हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर होता है तब हम शालोम की अवस्था में पहुंचते हैं।
हाँ, शालोम ये एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अक्सर बहुत सतही तौर पर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है शालोम का मतलब बस शांति है या लड़ाई झगड़े का ना होना,
जबकि ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा है। शालोम का मतलब है जीवन के सभी बिखरे हुए टूटे हुए हिस्सों का एक साथ जुड़कर पूरी तरह से एक हो जाना। ये एक पूर्णता है।
पूर्णता। स्रोतों में डिक बेरेंजी नाम के एक ट्यूबा वादक की कहानी है जो इस बात को बहुत अनोखे तरीके से समझाती है। डिक एक शराबी था, उसका जीवन एकदम बिखरा हुआ था।
हाँ, उसे कड़ाके की ठंड में ट्यूबा बजाना पड़ता था।
बिल्कुल, और ठंड सहने के लिए वो पीता था। लेकिन फिर एक समय आया जब उसकी जिंदगी बदली, उसने एक नया रास्ता चुना, और उसके बाद उसने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना की। उसने कहा, ईश्वर मेरे जीवन को बर्फ के एक बड़े गोले में समेटकर यीशु के लक्ष्य पर फेंक दे।
बर्फ का गोला, ये स्नोबॉल का रूपक बहुत ही सटीक है। मतलब आप बिखरी हुई बर्फ लेते हैं जो अपने आप में कुछ भी नहीं है, फिर आप उसे दबाते हैं
जब तक वो ठोस ना हो जाए।
हाँ, डिक यही कह रहा था कि मेरे जीवन के सभी टूटे गंदे हिस्सों को एक साथ लाओ और उस पूरे जीवन को एक ही दिशा में पूरी ताकत से फेंक दो। यही शालोम है, जीवन का एक ही दिशा में केंद्रित हो जाना।
लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। जब हमें शालोम या पूर्णता की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन अब एकदम आसान हो जाएगा?
मतलब तनाव मुक्त।
हाँ, तनाव मुक्त, क्योंकि आमतौर पर लोग शांति का यही मतलब निकालते हैं कि कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी या वित्तीय समस्या नहीं आएगी।
शालोम के बारे में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि सही रास्ते पर चलने का मतलब ये भी हो सकता है कि सूली पर चढ़ने तक की नौबत आ जाए।
सच में?
बिल्कुल। शालोम वो पूर्णता है जो आपके भीतर होती है। बाहर कितनी भी तूफान आए, दुनिया कितनी भी अराजक हो जाए, लेकिन आपके भीतर की जो व्यवस्था है वो नहीं टूटती। ये बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं है।
तो अगर ईश्वर का ये सुरक्षित शहर इतना अद्भुत है और इसमें इतनी गहरी शांति है, तो फिर हर कोई उस शहर का हिस्सा क्यों नहीं है?
ये एक अच्छा सवाल है।
मतलब आजकल यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमिकता का विचार बहुत लोकप्रिय है ना, कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर कोई बच जाएगा। ये सुनने में बड़ा दयालु लगता है।
सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये मानव स्वभाव की एक बहुत गहरी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। स्रोतों में सीएस लुईस की किताब द ग्रेट डिवोर्स का जिक्र है।
हाँ, वो बस वाली कहानी।
बिल्कुल, कहानी में दिखाया गया है कि नर्क के कुछ लोगों को बस में बैठाकर स्वर्ग की यात्रा पर ले जाया जाता है। उन्हें वो सुंदर जगह दिखाई जाती है।
लेकिन एक मिनट, अगर कोई सच में नरक जैसी जगह से स्वर्ग में जा रहा है तो वो वापस क्यों जाना चाहेगा? मतलब कोई भी सामान्य इंसान तो वहीं रुकना चाहेगा, नहीं?
तर्क तो यही कहता है, लेकिन सीएस लुईस दिखाते हैं कि इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलता। कहानी के अंत में केवल एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब वापस बस में बैठ जाते हैं।
अरे बाप रे,
वापस नरक जाने के लिए।
हाँ।
और कारण बहुत ही परेशान करने वाला है। वे उस नई जगह की पूर्णता और प्रकाश से घबरा जाते हैं। मतलब उन्हें अपनी छोटी छोटी बुराइयों, अपनी बुरी आदतों से एक अजीब सा लगाव हो गया है।
वे खुद को बदलना नहीं चाहते।
एकदम सही, वे अपनी पुरानी पीड़ा को नई शांति से बेहतर मानते हैं। अंततः इंसान की अपनी इच्छा ईश्वर की इच्छा पर भारी पड़ जाती है।
ये तो बहुत भयानक है कि हम अपनी ही बेड़ियों से प्यार करने लगे। तो क्या इसी वजह से न्याय की जरूरत होती है?
बिल्कुल, बिना न्याय के सुधार नहीं हो सकता। डॉक्टर ऑसवाल्ट इसे अमेरिका के इतिहास से जोड़कर समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी समाज को लंबे समय तक बिना न्याय के लगातार सुख मिलता है तो वो कुछ सीखते नहीं हैं।
वे उसे अपना अधिकार मान लेते हैं।
हाँ, वे स्वार्थी हो जाते हैं। जब तक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता, वे सही रास्ता नहीं चुनते।
और मानव जाति की इसी विफलता को स्रोतों में एक बहुत ही चुभने वाली उपमा से बताया गया। कहा गया है कि लोग एक गर्भवती महिला की तरह भयानक दर्द से गुजर रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने हवा को जन्म दिया।
ये उस खोखलेपन को दिखाता है।
हाँ, मतलब आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला।
वे बहुत शोर मचाते हैं लेकिन कोई सच्चा उद्धार नहीं ला पाते। इसी बात को एल्डर पार्सन्स नाम के एक मिशनरी के अनुभव से भी समझाया गया है। वे जापान में थे।
हाँ, वो धन्यवाद वाली बात।
बिल्कुल, उन्होंने देखा कि लोगों को पश्चाताप करना या मुझे खेद है कहना सिखाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप उन्हें पहले धन्यवाद कहना न सिखाएं। बिना कृतज्ञता के व्यक्ति अपनी गलती कैसे मानेगा?
सही बात है। और इसी संदर्भ में मदर टेरेसा का जो उदाहरण है वो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। वे कलकत्ता की मलिन बस्तियों में कीचड़ और बीमारी के बीच रहीं, लेकिन
वो गंदगी कभी उनके भीतर नहीं गई।
बिल्कुल, वो अछूती रहीं।
डॉक्टर ओसवाल्ड यही समझा रहे हैं, दुनिया को बदलने का तरीका लोगों को नरक से डराना नहीं है। सच्चा उद्धार लोगों को खींचता है। जब दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो भयानक स्थितियों में भी शांत है तो लोग भीतर से भूखे महसूस करते हैं।
वे सोचते हैं कि मेरे पास ये शांति क्यों नहीं है।
हाँ, हमारा अपना बदला हुआ जीवन ही सबसे बड़ी गवाही बनता है।
तो जब हम ये मान लेते हैं कि इंसान खुद से इस बुराई को ठीक नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वर इस स्थिति को कैसे संभालता है? यशाया का 27वां अध्याय हमें इसी अराजकता, या जिसे अंग्रेजी में कियोस कहते हैं, उसकी जड़ों तक ले जाता है।
प्राचीन काल में खासकर पगान संस्कृतियों में ये माना जाता था कि दुनिया की शुरुआत एक भयंकर जलीय अराजकता से हुई थी,
पानी का उफान।
हाँ, और उनका मानना था कि ये पानी कोई साधारण समुद्र नहीं बल्कि एक विशाल कई सिरों वाला समुद्री राक्षस था, जिसे वे लेविथान कहते थे। देवताओं ने उसे मारा तब व्यवस्था कायम हुई।
तो जब इब्रू ग्रंथों में लेविथान का जिक्र आता है तो क्या वे सच में मानते थे कि समुद्र के नीचे कोई सात सिरों वाला राक्षस है?
हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। हिब्रू लोग इस पौराणिक राक्षस को नहीं मानते थे। वे केवल एक इशारा कर रहे थे।
किस तरह इशारा?
वे अपने आसपास के लोगों से कह रहे थे कि असली लेविथान समुद्र का जीव नहीं बल्कि इंसान के दिल में छिपा पाप और उसकी अराजकता है, और ईश्वर ने इसी पाप की अराजकता को हराकर उद्धार लाया है।
अरे, ये तो वैसे ही है जैसे आज मैं किसी ताकतवर इंसान को देखकर कह दूं, अरे ये तो सुपरमैन है।
बिल्कुल सटीक।
मतलब मैं ये नहीं मान रहा कि वो सच में हवा में उड़ सकता है, मैं बस उसकी ताकत का प्रतीक दे रहा हूँ।
हाँ, हिब्रू लोग भी उस खतरे को दर्शाने के लिए लेविथान शब्द का उपयोग कर रहे थे, और ईश्वर इस अराजकता को कैसे हराता है, इसका सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण लुइस ज़ैम्परिनी की कहानी है।
वही कहानी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। लुइस एक ओलंपिक धावक थे ना?
हाँ, उनके पास सब कुछ था। द्वितीय विश्व युद्ध में वे बॉम्बार्डियर बन गए, फिर उनका विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया
और 47 दिन तक बेड़े पर, मतलब बिना पानी और खाने के और शार्क मछलियों के बीच।
और जब वे किनारे पहुंचे तो मुश्किलें और बढ़ गईं। जापानी सेना ने उन्हें पकड़कर युद्धबंदी शिविर में डाल दिया। वहां एक गार्ड था जिसने लुइस को विशेष रूप से निशाना बनाया। वो हर दिन उन्हें बुरी तरह यातनाएं देता था
ताकि उनके आत्मसम्मान को तोड़ सकें।
बिल्कुल। जब युद्ध खत्म हुआ और लुइस अमेरिका लौटे तो बाहर से तो आजाद थे लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे।
उन्हें PTSD हो गया था।
रात तो उन्होंने सपने में अपनी ही पत्नी का गला घोटने की कोशिश की। उनका पूरा जीवन उस लेविथान के जबड़े में फंसा था।
लेकिन फिर 1950 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उनकी पत्नी उन्हें बिली ग्रैम की एक सभा में ले गई।
हाँ, और लुइस वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे। वे बस भाग जाना चाहते थे। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए मुड़े तो अचानक उनके दिमाग में उस समुद्र के बेड़े की एक याद कौंध गई।
कौन सी याद?
उन्हें याद आया कि जब मौत सामने थी तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर वो बच गए तो अपना जीवन उसे सौंप देंगे। और ठीक उसी समय बारिश हुई थी। उस सभा में 5 साल बाद लुइस को अपने चेहरे पर फिर से उसी बारिश की बूंदों का एहसास हुआ।
अरे वाह, मतलब उन्हें एहसास हुआ कि उस अथाह समुद्र में वे अकेले नहीं थे।
बिल्कुल। और उस एहसास ने उनके झूठे नियंत्रण को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पूरी अराजकता को वहीं सरेंडर कर दिया।
और यही शालोम है।
हाँ, लुइस बाहर जाने के बजाय मंच की ओर गए। उस रात के बाद उन्हें कभी भयानक सपने नहीं आए। शराब छूट गई, वे वापस जापान गए और अपने प्रताड़कों को माफ किया।
ये तो अद्भुत है।
और ये शांति इतनी गहरी थी कि 92 साल की उम्र में लुइस एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। जब भाई ने डरकर उतरने को कहा तो बोले कि जिस दिन ईश्वर की मर्जी होगी वो मुझे बुला लेगा।
मतलब अराजकता कितनी भी भयंकर हो, जब हम सब सौंप देते हैं तो एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। लेकिन ईश्वर इस व्यवस्था को बनाए कैसे रखता है? क्योंकि यशाया अध्याय 5 में हमने एक ऐसे बाग के बारे में पढ़ा था जो केवल कड़वे अंगूर दे रहा था।
अध्याय 5 विफलता की तस्वीर थी, लेकिन अध्याय 27 तक आते आते ये सुखद अंगूर का बाग बन जाता है जिसकी रखवाली ईश्वर खुद करता है।
लेकिन रखवाली का मतलब ये तो नहीं कि बाग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। स्रोतों में अनुशासन और दंड के बीच एक बहुत गहरा अंतर बताया गया है।
हाँ, ये बहुत जरूरी अंतर है। दंड पीछे देखता है, आपने गलती की, आपको कष्ट मिला, इसका उद्देश्य सिर्फ तकलीफ देना है। लेकिन अनुशासन भविष्य की ओर देखता है।
मतलब वो प्यार से दिया जाता है।
बिल्कुल। इसमें आपको अपने गलत फैसलों के परिणाम भुगतने दिए जाते हैं ताकि आप सीख सकें। डॉक्टर ऑज़वाल्ड कहते हैं कि विनाश कभी ईश्वर का अंतिम इरादा नहीं होता। वो पौधे को मारना नहीं, उसे फलदार बनाना चाहता है।
लेकिन जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो वो अनुशासन बिल्कुल दंड जैसा ही क्यों लगता है?
क्योंकि दर्द तो दोनों में होता है ना, है ना? इंसान का शरीर दर्द में फर्क नहीं कर पाता, लेकिन हमें नियत देखनी होगी। डॉक्टर ऑज़वाल्ड एक फुटबॉल कोच की उपमा देते हैं।
वो क्या?
कोच कहता है, अगर मैं तुम पर मैदान में चिल्ला रहा हूं तो तुम्हारे लिए उम्मीद बाकी है, चिंता तब करना जब मैं तुम पर चिल्लाना बंद कर दूं।
अरे वाह, मतलब जब तक कोच चिल्ला रहा है विकास की गुंजाइश है। वो प्रेम का ही एक रूप है।
बिल्कुल।
तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि शालोम केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता है। लुइस की कहानी ने दिखाया कि एक दृढ़ फोकस अराजकता को शालोम में बदल सकता है।
एकदम सही।
यह बहुत ही गहरी चर्चा रही और अंत में हम सभी के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। सीएस लुइस की कहानी में लोग स्वर्ग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी पीड़ाओं से चिपके रहना चाहते हैं।
और लुइस ज़ैम्परिनी को शांति तब मिली जब उसने अपनी अराजकता को छोड़ दिया।
तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी जीवन में ऐसी कौन सी छिपी हुई अराजकता या कड़वाहट है जिसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वह उन्हें उस शालोम या पूर्ण शांति का अनुभव करने से रोक रही है जिसके लिए हम इंसानों को बनाया गया है।